नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।